میرا رنگ دے بسنتی چولا 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 ہو اج رنگ دے ہو مائے رنگ دے میرا رنگ دے بسنتی چولا میرا رنگ دے بسنتی
سنائی ہیں سنی بھی ہیں دوسروں کو. آج ایک کہانی کو پھر سے ریوائز کریں گے اور آج اس کا ارتھ دوسرے ریتی سے سمجھیں گے. تو گاؤں میں آگ لگ جاتی ہے, کہانی تو سب نے سنی ہے, ایک گاؤں میں آگ لگ جاتی ہے جہاں پر ایک ڈال پہ چڑیا بھی بیٹھی رہتی ہے, کوا بھی بیٹھا رہتا ہے. تو چڑیا جا کے بوند بوند پانی لے کے سم کنویں سے اور گاؤں میں ڈالتی ہیں. کوا دیکھ کے کیا ہنس رہا ہوتا ہے, کوا کہتا ہے کہ تمہارے چونچ بھر پانی سے کیا ہوگا. تو چڑیا نے کیا جواب دیا, جب اتہاس لکھا جائے گا تو ہمارا نام آگ بجھانے والوں میں ہوگا, نہ کہ آگ لگا کے دیکھنے والوں میں. یہ آگ لگی ہے تو دیکھنے والوں میں نہیں ہوگا. تو جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے آزادی کی قیمت. تو واسطہ میں اگر باہر دنیا میں دیکھے تو آزادی کی قیمت سب کو ایک ہی چکانی پڑی, وہ اپنی موت سے. واسطہ جنہوں نے بھی آزادی کے لیے کچھ کیا انہوں نے قیمت جو چکائی آزادی کی وہ موت ہے. لیکن ان جو آزادی کے لیے ان کے اندر جذبہ جنون جو تھا انہوں نے آزادی میں جیون جیا, کاٹا نہیں. تو ہم اس استھول دنیا کی بات نہیں, اس برہمن جیون میں بات کریں گے کہ آزادی کی قیمت کیا ہوئی, آخر ہم کن کن چیزوں میں آزاد ہوئے دنیا سے اس گیان مارگ میں آنے تک, اور کیا قیمت ہم. ایسے تو باہری کڑیاں ہیں جو دو چیزیں ہیں, ایک ستھول اور سوکھ. तो स्थूल रूप से तो जब ज्ञान में आते हैं तो कितना विरोध हुआ, गालियां सुननी पड़ी। ज्ञान में आने के बाद बाबा तो लक्ष्मी नारायण का फोटो दिखा दिया, साथ में ये नहीं बताया कि ये बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। उसने तो स्वर्ग दिखा दिया, स्वर्ग के नजारे, लेकिन ये नहीं कहा कि मरना भी पड़ेगा उसके लिए, स्वर्ग में जाना है तो आजादी की कीमत तो बहुत। लौकिक से भी जब इस ज्ञान मार्ग में आते हैं तो कितना विरोध, कितनी सारी चीजें हैं, तो बहुत सारी कीमतें चुकानी पड़ी ना। तो वो तो होगी, बहुत सारी चीजें हैं ऐसे लौकिक में, स्थूल में। तो अब हम ब्राह्मण जीवन की बात करेंगे। ब्राह्मण बनने के बाद हमें उस मंजिल तक पहुंचने के लिए कौन कौन सी कीमत अभी चुकानी बाकी है। ब्राह्मण तो बन गए, आजादी की कीमत मतलब मौत है ना, कुर्बानी। तो कुछ एक बातें हैं जो देखेंगे कि किन किन चीजों में अभी तक आजाद हुए हैं या नहीं हुए, या अभी भी वो रूढ़िवादी संस्कार जो उस दुनिया में थे वो इस दुनिया में भी चल रहे हैं। तो पहला है इसमें ए अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। बाबा कितने मूल्यों में कहता है, क्या मतलब है इसका? ब्राह्मण जीवन में, लौकिक की बात नहीं करेंगे, उस दुनिया की बात नहीं करेंगे, ब्राह्मण जीवन में वाक्यांश का क्या मतलब है? क्योंकि बाबा मुरलियों में बोलता है तो क्या उसका अर्थ है? ब्राह्मण बनने के बाद भी टके शेर भाजी और टके शेर काजा, मतलब उसी रेट का उस राज्य में उसी रेट का भाजी भी है, उसी रेट की काजू भी है, सब कुछ एक ही रेट से, मतलब एक ही चल रहा है, किसी का न उस फर्क ही नहीं है। जबकि वस्तु अलग अलग है तो कीमत में भी फर्क होना चाहिए ना, तो कीमत में फर्क नहीं है। तो वास्तव में इसका ये है ज्ञान कि हम उस दुनिया में जैसे रूढ़िवादी से चल रहे थे, इधर आने के बाद भी वही संस्कार है, बदले नहीं। मतलब बाबा जो कहता है कि ज्ञान क्या है, अमूल्य, उस दृष्टिकोण से हमने नहीं देखा। इस ज्ञान को भी हमने भक्ति मार्ग से शायद कंपेयर कर लिया। उधर भी जाते हैं घंटा हिला के आ जाते हैं, मंदिर जाते हैं घंटा बजाते हैं और हिला के काम पूरा हुआ, बस कारोबार में लग गए। इधर भी हम ज्ञान मार्ग में मूल्य सुनते हैं, सब कुछ किया, मूल्य सुन के बाहर निकले, बस वही कारोबार शुरू। अंदर कितना गई समाई यानी समाई, या अंदर शब्द घुसे यानी घुसे, वो तो बात ही अलग है, बस वही रूटीन है। बाबा बदल जाएंगे, लंबे काल का पुरुषार्थ है बाबा, है ना, थोड़े समय का थोड़ी है, लंबे काल का है। और अपने आप को यहाँ से पुराने स्वभाव संस्कार से क्या, वही आज बाबा ने कहा ना, वो तारे टूट के नीचे गिरते हैं तो पत्थर बन जाते हैं, और ज्ञान का कितना भी आप उनको डालो जल, लेकिन नहीं पिघलता। मतलब वही संस्कार हमने पकड़ के रखे हैं अभी भी, और दूसरा अगर कोई कहे तो वो अहंकार में चोट लगती है। फिर अंदर कोई हमको दूसरी हमारी गलतियां कोई बताता है तो उसमें हमको चोट लगती है, ऐसा बोलते हैं। वास्तव में वो कांटा, जब कांटा हमको लग जाता है तो जब कांटा कांटा से निकालते हैं तो दर्द होता है ना। तो वास्तव में जब हमें कोई कुछ बोले और दर्द होता है तो मतलब वो हमारे अंदर क्या है, बीमारी है। वो दूसरा बता रहा है जो, उसको धन्यवाद करना चाहिए, लेकिन उस समय भूल जाते हैं। तो पहला है रूढ़िवादी और अंधेर नगरी वाला कारोबार, दूसरा है भ्रांतियां, भ्रम। कुछ भ्रांतियां उस ज्ञान मार्ग से इधर ज्ञान मार्ग में आने पर भी कुछ भ्रांतियां रहती हैं। ये 10 साल से चल रहा है ना, 20 साल से, ये जरूर सही है, उसी को फॉलो करने लगे। हो सकता है किसी के संस्कार 10 साल में भी ना बदले हों, और किसी के 10 दिन में भी बदल जाए। सबका अलग अलग हिसाब किताब है। एक ही दृष्टिकोण से किसी को देखना, ज्ञान मार्ग में बहुत बड़ा धोखा देना है अपने आप को। एक बार क्या हुआ, एक भाई था, रियल स्टोरी है, सिख सेंटर में आता था। तो जब वो उसने मतलब ज्ञान में नया नया आना शुरू किया था उसने, तो बहुत मतलब उसकी परिस्थिति और जो जिस वातावरण से वो आया था बहुत ही कनिष्ठ था, मतलब ये कहो कि छोटे लेवल का था, गरीब परिवार से भी था। तो ज्ञान में आना शुरू किया धीरे धीरे। तो अब बहन जी भी जो दीदी थी वो भी छोटी छोटी सेवा उस अनुसार से देते थे कि भाई इसको कैसी सेवा देनी है ना। तो लंबे समय तक जो सेवा मिलती थी, लेकिन उसके अंदर ये था क्वालिटी के कभी किसी सेवा में आर्ग्यू नहीं किया, और कोई भी सेवा चलते थे, क्योंकि छोटा व्यक्ति कर भी लेता था वो सारी चीजें। लेकिन ज्ञान में इतना ही बाबा में इतना कम समय में उसको निश्चय हो गया बहुत ज्यादा अंदर से। दूसरे को देखता भी है कि ये तो हर चीज में एक्यूरेट हो गया है, मतलब हर चीज में टाइम से पहले करना कोई भी सेवा और कोई भी कुछ भी, धीरे धीरे चलते चलते। और ज्ञान में बाबा में इतना निश्चय उसको कि धीरे धीरे उसकी लौकिक जो जीवन था वो परिवर्तन हो गया बहुत ज्यादा। इतना परिवर्तन हो गया वो कि जो उसकी लौकिक घर में मतलब अच्छी नौकरी में आ गया, वो अच्छा एजुकेशन मिल गया, क्योंकि बच मतलब थोड़े कम आयु से आया था, अच्छा एजुकेशन मिल गया, कुछ नहीं बताया, इतना सारा परिवर्तन हो गया। लेकिन कुछ ना अपने पुराने जीवन के बारे में अनुभव सुनाया उसने, ना नए जीवन में जो बाबा से प्राप्ति हुई वो भी अनुभव नहीं सुनाया, और चुपचाप जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा था। कुछ वर्ष गुजर गए, उसके बाद बहुत अच्छी पोस्ट में वो चला गया, लेकिन बताया नहीं, गुप्ती रखा। जैसा आता था, जैसा उसका पहला दिन था ज्ञान में आने से, वैसा ही उसका जीवन में परिवर्तन होने के बाद भी वैसा ही जीवन था। और सेंटर में बहन जी के दृष्टिकोण वही था कि तो एक बार बहन जी जा भी चुकी थी उसके घर, तो देखा कि तो ऐसे ही साधारण परिवार का है। उसके बाद कभी ज्यादा हिंट भी नहीं दिया दीदी लोगों ने। तो सेवाएं भी उसको जब भी कुछ होता था बड़ा प्रोग्राम, तो पहले भी उसको सेवाएं छोटी मिलती थी, और अभी भी होते थे प्रोग्राम तो उसको सेवाएं वैसे ही मिलती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि बहुत बड़ा प्रोग्राम था, सेवा उसको यही मिलती थी कि जो भी मतलब लोगों को टोली या वगैरह दी जाती है तो उसको पैकेट वो सफाई करने का मिलता था सेवा, और वो खुशी खुशी करता था। और शायद उसी का परिणाम उसको था कि लौकिक में उसने बहुत उन्नति कर ली थी, बिल्कुल भी मैंपन नहीं। और जब ऐसे ही मतलब टाइम हो गया, मतलब प्रोग्राम हो गया सारा, बड़ा प्रोग्राम था कोई वीआईपी का, तो उसको ऐसे ही गेट पे सेवा मिलती थी। तो ऐसे ही वो एक दिन मतलब उसी के डिपार्टमेंट के जूनियर लोग, उसके जो नीचे काम करते हैं, वो आए हुए थे उस प्रोग्राम में, और वो सारे वीआईपी के उसमें थे, और वो बाहर खड़ा होके वो प्रोग्राम के एंड होने के बाद वो सारा सफाई कर रहा था, लेकिन वो लोग निकले उसके जूनियर, तो वो देख के हैरान हो गए, ये तो हमारा बॉस है, ये इधर पे बताओ ऐसा कर रहा है सेवा। और उन लोगों ने उससे कुछ नहीं कहा व्यक्ति से, उधर जो बहन जी थी ना उनसे पूछा कि ये व्यक्ति कब से ज्ञान में है। तो बताया कि 20-25 वर्ष जो भी जितने भी हुए, दीदी ने बताया कैसे ऐसे। बोली क्या आप इनको अच्छे से जानती हैं? तो बोले हाँ जानते हैं कि आता है ज्ञान में और ऐसा ही। तब उन व्यक्ति ने बताया ये तो जो एसडीएम है ना अपने इलाके का, उसका जो गाइडलाइन तैयार करता है ना, एसडीएम भी इस व्यक्ति की बात मानता है, उसका असिस्टेंट है। तो बहन जी को बड़ा वो लगा, और फिर एक दिन प्यार से बहन जी ने बढ़िया उसको बुलाया, टोली वोली खिलाई और उससे पूछा कि आपने हमको बताया नहीं इतने सारे कारोबार रहते थे हमारे यज्ञ के भी, ये भी, कि आप इतने बड़े लेवल में पहुंच गए हो। जब आप आए थे तो तब तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन आप बताया नहीं आपने। तो उसने कहा कि बहन जी बाबा ने किस मुरली में कहा है कि जब कुछ हो जाए तो बता देना चाहिए। तो ऐसे लोगों के जब जीवन में अनुभव सुनो तो अपने लगता है कि बताओ, हम अपने जीवन में अगर देखें तो अपन ने थोड़ी सी प्राप्ति कर लेते हैं इस जीवन में और ढिंढोरा कितना बड़ा पीटना शुरू कर देते हैं। ऐसे ऐसे हमने अभी लॉकडाउन का ही लाइव एक भाई का अनुभव सुना है कि वो सेंटर में आता था, मतलब नॉर्मल ऐसा ही, लेकिन था बहुत जिज्ञासु, लेकिन घर की और तमाम जिम्मेवारियां के लिए इकलौता था, जिसके कारण कभी कभी सेवाएं उसको दी जाती थी तो टाइम पे ना पहुंच पाना या थोड़ा कुछ हो जाता था, और उसको वो बताता भी था कि ऐसा ऐसा हो गया है दीदी। तो एक दिन अचानक उसको सेंटर से मना कर दिया गया कि आज के बाद आप सेंटर नहीं आना। तो ठीक है, उसने हंसते हंसते स्वीकार कर लिया, लेकिन उसने अपने जीवन में धारणा इतनी उतने कम समय में कर ली थी कि वो पंक्चुअल था हर चीज में। उसकी धारणा है, उसका जो मर्यादा है, जो दिनचर्या, वो एक्चुअल बिल्कुल राइट थी। जब अभी लॉकडाउन में सेंटरों में थोड़ा हलचल हुई कि मतलब लोगों का आना बंद हो गया है ना, जो रेगुलर आते थे वो भी आना बंद कर दिए, जो सेवा चलती थी सेंटर में, क्योंकि गांव का सेंटर था, थोड़ा हर चीज सबके सहयोग से चलता था, कोई ऐसा तो नहीं था कि जो एक ही व्यक्ति सहयोग कर दे। तो सेंटर में भी बहनों को थोड़ा तकलीफ होना शुरू हो गई, मैंने इकोनॉमी से रिलेटेड, खाने को नहीं तब चीजें है ना, पानी भी दूर से लाना पड़ता था, कोई सपोर्ट नहीं, सारी चीजें। तो अचानक एक दिन वो बहन को मतलब भोजन बिल्कुल नहीं था, एक दो दिन बीत गए ऐसा। तो अचानक वही व्यक्ति ने जिसको बहन ने मना कर दिया था, उसी ने फोन किया बहन को और बोला, मैं शहर से लौट रहा हूं दीदी, आप मेरे को 2 महीने का राशन का ना वो बता दो पूरा कि क्या क्या आपको चाहिए राशन, वो मैं इधर से लेके आऊंगा। और वो पूछ नहीं रहा कि राशन है कि नहीं, वो बोल रहा कि आप हमको बताओ सामान, आप लिस्ट बना के रख दो, हम एक भाई को भेज रहे हैं उसको दे देना आप। तो ऐसा होके और उसको लिस्ट दी, वो भाई गया और उसने पैसे ट्रांसफर किए और वो राशन पहुंचाया। मैंने सोचो, जिसका प्रेम भगवान से होता है ना, वो किसी व्यक्ति से अपेक्षा नहीं रखता है। शायद उसको कोई निंदा कर दे, गिलानी कर दे कोई व्यक्ति, तो वो भगवान को देख के चलता है कि और जब उसको दीदी ने बुलाया, उसको उससे बात की, तो बोले हमने तो आपको ऐसा ऐसा डांटा भी था और मना भी कर दी, तो आप तो बुरा नहीं माने। बोले वो आपकी डांट ही तो थी जिससे मैं आज सेवा कर पाया, अगर उस समय आपने नहीं डांटा हो गया था तो आज आपकी वो नहीं होती। तो हर चीज में कल्याण है, हर चीज में कल्याण है दीदी, ऐसा नहीं है। दीदी को थोड़ा लगा, देखो शायद उस समय अगर वो आर्ग्यू कर देता दीदी को या तो शायद परिवर्तन उनके अंदर मुश्किल था, लेकिन अब वो दीदी हर व्यक्ति से मतलब ऐसा रिलेशन कि जैसे माँ के जैसे पालना देने। और आज लोग इस समय इतनी सेवाएं होगी कि वो सेंटर आधा अधूरा बना पड़ा था, आज पूरा कंप्लीट बन गया देने, मतलब लोगों ने सहयोग शुरू, मतलब इस ज्ञान में जब हम आते हैं तो हमको प्यार मिलता है, और कुछ समय के बाद जब पालना मिलती है, दिल का प्रेम मिलता है, तो व्यक्ति वो करने को तैयार हो जाता है जो उसकी क्षमता से भी बाहर होता है। वो तो बाबा ने कहा है, कल की मुरली में भी बाबा ने कहा था कि बच्चे कहते हैं कि अच्छा होता उस दुनिया में थे तो इतनी माया नहीं थी, और इस दुनिया में आ गए तो कितनी माया है, है ना। तो बाबा ने कितना सुंदर कि भाई युद्ध के मैदान में हो, उधर कौन सा मैदान है, इधर तो युद्ध करते करते भी आपने शरीर छोड़ा तो स्वर्ग निश्चित है, उधर कौन सा स्वर्ग निश्चित है। अब जैसे गाना सुना भगत सिंह की भी ले लो बात, तो आजादी की उन लोगों ने देशभक्ति में कितना कीमत चुकाई जान दे के, है ना। तो क्या वो स्वर्ग में आएंगे क्या? हाँ, तो वो कौन आत्मा है जो जज्बा जुनून था, जिनको एक लेटर भगत सिंह ने अपने पिताजी को लिखा, एक जमींदार जब वो पढ़ाई कर रहे थे तो एक जमींदार जो थे उस गांव के उनके, तो वो रिश्ता लेके आए थे भगत सिंह के लिए, तो घर वालों ने सब एग्री कर लिया। वो तो कॉलेज से लौटा घर तो पता चला कि ये सब हो गया इधर कारोबार मेरी शादी का। बोले तो फिर उसी दिन उसने रात तैयारी कर ली पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ने का, और एक लेटर लिख दिया पिताजी को और लाहौर चला गया चंद्रशेखर आजाद के पास। दो दल थे देश आजादी के, एक नरम दल एक गरम दल, दो दल थे, है ना। तो उसने गरम दल ज्वाइन कर लिया, पहले कुछ समय तक नरम दल में थे, फिर गरम दल ज्वाइन कर लिया कि गांधीगिरी से काम नहीं चलेगा, थोड़ा अलग करना पड़ेगा, है ना। तो लाला लाजपत राय के साथ इनकी टीम के साथ ने ज्वाइन किया। एक लेटर जो उसने लिखा बापूजी को, वो लेटर बापू मतलब उन्हें अपने पिताजी को, वो लेटर एग्जिट पढ़ के सुनाते हैं। पूज्य पिताजी नमस्ते, मेरी जिंदगी मख से आला यानी आजादी ये हिंद के असूल के लिए वफ हो चुकी है, इसलिए मेरी जिंदगी में आराम और दुनिया भी ख्वाहिशात वायसे कसस नहीं है। आपको याद होगा कि जब मैं छोटा था तो बापूजी ने मेरे यज्ञोपवीत के वक्त ऐलान किया था कि मुझे खिदमत वक्त के लिए वफ कर दिया गया है, लिहाजा मैं उस वक्त की गई प्रतिज्ञा पूरी कर रहा हूं, उम्मीद है आप मुझे माफ फरमाएंगे। भागने के बाद ये पत्र लिखा। तो वफ का मतलब होता है खुदा के नाम पे अर्पित, उनके बापूजी मतलब दादाजी ने, यज्ञ मतलब जो प्रतिज्ञा करते हैं, जनेऊ का जो जनेऊ पर वो होती प्रक्रिया वो, तो खिदमत मतलब सेवा के लिए। सोचो एक बापूजी की उसने प्रतिज्ञा के लिए अपने सारे ख्वाहिशात मतलब जो कशिश बोले दुनिया भी के कोई शौक नहीं है, देश की आजादी के लिए, और हम बच्चों को विश्व की आजाद करना है आत्माओं को, हमने कौन सा आजादी का लेटर लिखा है। ब्राह्मण बन गए आ गए फिर भी घर की याद सता रही है, 10 बार फोन कर रहे, वो उधर से फोन नहीं आ रहे इधर से जा रहे फोन, सेवाओं को छोड़ के बार बार घर का राउंड लग रहा है। लौकिक में चार संबंधी हैं, सोचो जो भी हैं, जो माता पिता भाई बहन जो भी हैं, उन चार की केयर के लिए पूरे विश्व की जिम्मेवारी छोड़ के जाना, तुम कौन हो, आधार मूर्त हो, पूर्वज हो, कौन कहता है। बापू का बापू, जिस दिन तुम्हारा ब्राह्मण जीवन में जन्म हुआ उस दिन प्रतिज्ञा हो गई कि जीवन ये सांस ये संकल्प हर एक चीज किसके लिए वफ है, भगवान के लिए। एक बार बैग जो तैयार होकर निकल गया घर से, दोबारा कई लोगों को अनुभव सुना है भाई जी ने कि कोई 15 साल में 1 घंटे के लिए गया, ठीक है, कोई जरूरी फिनिश करने गया तो बात अलग है। इधर रह के उधर कारोबार चल रहा है उधर का, तो ये क्या है? नाफरमान बरदार। इस यज्ञ में रह के लौकिक का भी भरण पोषण करना, ये भी खतरा है। और चिड़िया की और जो कौए की कहानी, वो बाहर वालों के नहीं, ले हमारे लिए। सच ना बोलना इस यज्ञ में, अपनी इमेज अच्छी दिखाना दूसरों को और सच को दबाना, ये भी दूसरों के लिए अनित है। शायद कोई व्यक्ति सच ही के लिए इस ज्ञान मार्ग में आने के बाद सच ही हमको सच्चाई से चलना है, तो होना चाहिए ना। तो ये कुछ बातें थी। तीसरी थी सी मतलब करप्शन, जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं, करप्शन। पहले तो दुनिया भी में करप्शन मतलब झूठ बोलना, चोरी करके, मतलब झूठ, दगाबाजी, सारी चीजें अपन ने करी है, अनुभव से बता रहे हैं। अब ये कोई हम दूध के धुले नहीं बैठे, इधर सारी चीजें करी हैं और ब्राह्मण बनने के बाद किया है। और भय, और क्या भय, क्योंकि तुमको लाने वाला भगवान है और इधर से निकालने वाला ही भगवान होगा, कोई व्यक्ति नहीं है इधर पहुंचाने वाला कोई, और किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं है इधर से निकालने की, न लाने की इधर किसी की हिम्मत थी, न निकालने की किसी की हिम्मत। इस जीवन में निर्भय चलना, ब्राह्मण जीवन को जीना और काटना दोनों में अंतर है। ब्राह्मण बनने के बाद जीवन कई काट रहे, अरे ऐसा कई जी रहे, मजे की जीवन है, ऐसी जीवन कहां मिलेगी। कई उस योग के कारण चल रहे, अरे सह लो, स्वर्ग में तो खुशी है, अरे डायमंड को आप एंजॉय नहीं कर रहे, उस गोल्ड में क्या एंजॉय रहेगा। और इधर पे आप सोचो, इधर पे दुखी रहोगे तो संस्कार कौन से लेके जाओगे, दुखी के लेके जाओगे ना। इधर जिसने एंजॉय किया वो भी उधर एंजॉय करेगा। करप्शन कई प्रकार के हैं, उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो एडिटिंग ज्यादा करनी पड़ेगी। करप्शन मतलब हम अपने लिए कितने हॉनेस्ट हैं। वास्तव में हमको भगवान ने जो हमने सुना है लेटर, कि लोगों को दुनिया में देखो, भारत माता के लिए कहो या एक देश के लिए कितना जुनून जज्बा था, हमें तो पूरे विश्व के लिए करना है, हमें कितना जुनून जज्बा होना चाहिए। एक दिन अमृत वेले उठ गए, दूसरे दिन सोए पड़े और कहते हैं मैं विश्व कल्याणकारी। कल बाबा ने कहा था ना, चुल्लू भर पानी लेके जाते हैं लोग, कोई उसमें डूब जाता है, डूब के नहा के जाता है, कोई एक एक बूंद बूंद करके उसका। तो वास्तव में शायद हम सागर के किनारे होके भी सागर का महत्व शायद सागर के किनारे वालों को नहीं होता। कहते हैं ना दिए तले अंधेरा, वो दुनिया वालों की कहानी नहीं है, दिए तले अंधेरा। शायद हम यहीं बैठे, यहीं पहली आत्मा जिस सतयुग की, वो भूमि पवित्र स्थान है ऐसा। शायद हमने बहुत पर इस ज्ञान में आने के बाद बहुत भ्रमण किया धार्मिक स्थल, ऐसा स्थान, ऐसे पवित्रता के वाइब्रेशन दुनिया में शायद कहीं होंगे। वो बाबा कहता है ये वो स्थान है, यहाँ जो तुम करोगे वो विश्व की आत्माओं को दिखेगा, शीश महल है। और ये सही है, इधर आके भी हम अपने संस्कारों के ऊपर अपने प्रति करप्शन करें तो कितना गड़बड़ है। और वास्तव में यहाँ की आवाज तो विश्व में जाती है, क्योंकि ये बाद में महसूस हुआ, जब पहली बार इधर बोला तो ठीक, कुछ दिन बाद बोलना शुरू किया तो लोगों के मैसेज आना शुरू हुए कि वास्तव में लोग सुनते हैं, हम तो सोचे 4-5 लोग बैठे हुए हैं इधर पे, ज्यादा लोग हैं नहीं, मतलब जितने हैं सामने उतने ही लोग हैं। और बाद में पता चला जब ऐसे ऐसे लोगों के मैसेज आए जो कभी गए नहीं, सेंटर नहीं गए, उन लोगों ने भी सुना, अद्भुत, तब समझ में आया कि यहाँ आवाज यहाँ की विश्व में क्या पूरे ब्रह्मांड में भी रहती है ये, तो तब से थोड़ा तो तीसरा है करप्शन, चौथा है डी धारणा, धारणाओं का अवधारणाएं हो गई हैं, धारणा तो छोड़ो अब धारणा मतलब जब शुरू में रहते हैं ना, शुरू में आते हैं ज्ञान में, तब तो हमें ना जो भी अनुभूतियां होती हैं शायद हमारे संस्कार उतने नहीं बदले होते, हमारी शायद धारणाएं उतनी नहीं होती, फिर भी हमें अनुभव होते हैं, क्यों? उसमें स्वा का पुरुषार्थ नहीं होता उस अनुभव में, वो जैसे माता पिता जो बच्चे छोटा होता है ना, तो माता पिता हर इच्छा पूरी कर देते हैं क्योंकि बच्चा है, और ऐसे ही इस ज्ञान में अगर बाबा पहले बच्चों को पालना वैसी नहीं देता जो महारथी है, तो शायद ही बहुत कम लोग रहते है ना, पहले उसने प्यार की, सबका अनुभव होगा खुद का कि पहले आपको यज्ञ से स्नेह ही मिला, आप कितनी भी दुनिया में कितनी भी कर्म कांड किए हो लेकिन प्यार मिला उससे आप परिवर्तन शुरू हुआ ना धीरे धीरे, लेकिन जब हमको फ्री में बोनस मिल गया बाबा से, जो सुख था जो अत्यंत सुख था वो हमने उतनी धारणाएं नहीं की लेकिन वो आराम से हमको मिल गया, लेकिन बाद में जब वो बाबा हाथ छोड़ देता है, जब हम वो अपने संस्कार अगर नहीं बदलते वैसे ही चलते तो फिर अनुभव होना क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। उन अनुभव को हमें बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने जीवन में, त्याग बढ़ाना पड़ेगा है ना, त्याग बढ़ाना पड़ेगा, तपस्या बढ़ानी पड़ेगी, झुकना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, तब हमको अनुभव मिलेंगे, और अगर वैसा नहीं करते वैसे ही चल रहे पुराने संस्कार से तो हमको अनुभव नहीं होंगे। तो धारणाओं की अवधारणा, तो हमें त्याग करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि और इधर पे जैसे ही अब ज्ञान मार्ग में शुरू करते तो लोगों का दृष्टिकोण बदलता है, उनकी भावना बदलती है हमारे प्रति और वो हमारे लिए कुछ करना शुरू कर देते हैं, और उसको हम स्वयं स्वीकार कर लेते हैं तो फिर वो कोई मतलब का नहीं रहता, फिर हमारा पुरुषार्थ की कीमत हमने ले ली इसका मतलब। तो ऐसे ही कुछ चीजें बदलने की जरूरत है, ये था डी। ई ई माना इकोनॉमी, और वर्तमान समय बहुत जरूरी है हर जगह, कहीं की बात नहीं हो रही पूरे ब्राह्मण परिवार की, और इसमें बहुत जरूरी है, चाहे वो कोई गृहस्थी रहता हो, चाहे निमित्त आत्मा हो, चाहे समर्पित सरेंडर जो भी हो, सबके लिए एक सा है, जो जो घर में भी रह रहे हैं तो ज्ञान मिलने के बाद मतलब एक भी धन खर्च अगर व्यर्थ किया तो समझो वो यज्ञ का खर्च हो रहा है। इसमें तो नहीं जाते डिटेल में, बाकी तो सब समझ में आता है। अभी बाबा ने लास्ट मैसेज ज्ञान सरोवर में शायद दीदी बता रही थी कि बाबा ने ऐसा मैसेज दिया कि इकोनॉमी बढ़ा तो नहीं है बच्चे, और अभी क्या है कि लॉकडाउन में सारी सेंटर बंद हो गए, मतलब लोगों का आना जाना उतना कम हो गया, तो हर एक ब्राह्मण जो भी है जहां भी है हमारा ही कर्तव्य बनता है खुद के लिए कि हर चीज का जो है सदुपयोग, और जितनी जरूरत है उतना उपयोग हो, ऐसा खाना पीना ना हो कि बार बार बीमार पड़ते रहें। डिस्पेंसरी में हमने देखा जब हम एक बार ऐसे ही कुछ बीमार हो गए तो हमको बहुत सारी दवाइयां फ्री में मिल गई, बहुत कीमती, हमको एक बार दांत में दर्द हुआ था तो उन दवाइयों के लिए उस ट्रीटमेंट के लिए हमने करीबन 5-6 हजार रुपए खर्च हुआ था, वो सारी दवाइयां हमको फ्री में मिल गई इधर पे, तो बाबा के सामने जब हम गए तो हमने बोला बाबा तो हम इधर आके जमा कर रहे, अब बोझ हो रहा है, वो समझ में नहीं आया। तो जब दवाइयां मिल गई तो हमने कहा कि दवाई तो हमको खानी नहीं है, चाहे निकल लें इधर से, अब ठीक करना तो आपको करो, या तो ऐसा कुछ करो कि दोबारा बीमार नहीं होना चाहिए। कहीं बीपी लो, कहीं बहुत कुछ हो गया, ऐसी सारी चीजें, और इतना सारा चीजें बता दी है उनने कि। तो फिर क्या किया कि नहीं होना चाहिए, ठीक आप जो बोलो वो करेंगे। तो ऐसा किसी ने बताया कि एक काम करो, करेला का जूस पी लो, वो चीज कवर हो जाएगी तुम्हारी। ये तो सही है, उस दवाई से सस्ता करेले का जूस है। तो ऐसे ही बाबा की याद में करेले का जूस भी पिया, लेकिन पहली बार जब पिया तो बाहर निकलने की कोशिश, लेकिन हमने कहा एक बूंद नहीं गिरना चाहिए। अगर भगवान से प्रेम, खुद को टेस्ट करने की कोशिश की, अगर तेरा प्यार भगवान से है तो करेले को ऐसे पी ले जैसे जैसे बिल्कुल आम का रस हो, बिल्कुल आम फेवरेट था, ऐसा ही संकल्प। तो जो जब पीने के बाद जो लगन बढ़ी बाबा के प्रति, फिर दवा नहीं खाई, रखी रही, अभी वापस भी नहीं करने का, अभी रखे रहो। तो क्या है, दो तीन दिन गुजर गए, फिर क्या, फिर धीरे से चेक कराया, बीपी टेस्ट करो पहले, दवा जेब में रख के ले गए, वहीं उन्होंने चेक किया, बोले ठीक है अब नॉर्मल हो गया, दवा खत्म तो नहीं हुई और तो नहीं चाहिए। हमने बोला ये दवा ओम शांति। वास्तव में बार बार बीमार पड़ना भी ये हमारा बोझ है। इधर माया कुछ नहीं है, इधर सारी चीजें आपको मिलेंगी, वही माया है। हमें अपनी प्रकृति को देख के खाना है, कहीं खा रहे रबड़ी और पी रहे फिर नींबू पानी, और दूध भी लिया और नींबू पानी भी पी लिया, फट गया अंदर शरीर, नुकसान नहीं होगा। शाम को खा रहे पनीर, अपनी प्रकृति से। अब ऐसा भी नहीं कि आपको विरोध करना कि यार इधर तुम बनता है तो हमारे लिए सब कुछ, बाबन का मौजों का योग है, मौजों का योग। ऐसा नहीं कि ना समझ, बाबा ने कई बार कहा ज्ञान में कि ज्ञान मतलब समझ, हमारे लिए क्या है। फिर हमने त्याग क्या किया, दुनिया छोड़ के, सारी चीजें छोड़ के उधर से आ गए और इधर भी वही कर रहे हो, तो मतलब क्या है इधर उधर। दूसरे को किसी को कहने की जरूरत नहीं, अपने से अपने को ही बात कर, क्योंकि हमारा ट्रीटमेंट हम खुद ही कर सकते हैं, दूसरा कहेगा तो हमें क्या होता है, अहंकार में चोट लगती है, ये हमारी वो करता है, और जबकि है कांटा अंदर, कांटा कांटे से निकलता है। आप अपने अनुसार सुधरे कभी, जब तक दूसरे ने नहीं बोला ना तब तक सुधरता नहीं है व्यक्ति। तो ये था इकोनॉमी। एफ फियर, ब्राह्मण बनने के बाद भी डर है, मधुबन में रहूं, वहां रहूं, घर में रहूं, कहां रहूं, फलाने भविष्य क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, ये मैं अगर सच बोलता हूं तो ये दूसरों को आपत्ति होगी। देखो कौआ भी यही है और चिड़िया भी यही है, रास्ता तो है ही है, इस मार्ग में चलना है तो आप कैसे भी चलो, बीके बनने के बाद, चाहे पुरानी धारणा छोड़ो चाहे ना छोड़ो, आपको सहन करना ही पड़ेगा, है ना। चाहे झूठ बोलने वाले को कोई सहन सकती, सहन करने की जरूरत नहीं, वो झूठ बोल के निकल जाएगा, लेकिन सच बोलने वाले को सहन करना पड़ेगा। जैसे इकोनॉमी की बात आई, अभी भी बहुत सारी चीजों में इकोनॉमी की जरूरत है, डेटा इतना वेस्टेज यूज कर रहे हैं लोग। अब हमारा अनुभव कहता है, चलो बाहर वाले भी करते हैं लेकिन वो भी यज्ञ का है, अगर आप वाहियात चीजें देख रहे हो मोबाइल में जिससे ज्ञान योग का कोई रिलेशन नहीं, तो वो भी क्या है, वेस्ट है ना, टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट। यज्ञ में अगर हम कर रहे हैं तो यज्ञ का भी वेश, और लौकिक में भी कर रहे हैं तो ये मत सोचो कि वो हम अपनी कमाई से कर रहे हैं। जैसे ही हम ब्राह्मण बनते हैं हमारी कुछ भी नहीं रह जाता, जो भी हम कर रहे हैं वो किसके लिए, विश्व परिवर्तन के लिए, विश्व कल्याण के लिए। कोई अच्छी चीज भी देख रहे हैं आप तो आपको देख के क्या करना है। जो भी कहानी किससे देख सुनते हैं ये जस्ट मिसाल है, वास्तव में बाबा मिसाल देता है, सितारे से, कभी सितारे से कंपेयर करता है, कभी डायमंड से, क्योंकि आत्मा अदृश्य है, ज्ञान अदृश्य है, उसको स्थूल चीजों से नहीं जोड़ा जाएगा तो समझ में नहीं आएंगी। ऐसा ही है। तो कभी कई लोग बाहर भी इतना मतलब हर चीज में कहते भी हैं कि किससे कहानी ये सब क्या है, ज्ञान तो है ही नहीं। वास्तव में अगर आप सोचो, स्कूल में जाते थे तब आपको A4 एप्पल पढ़ाते थे, एप्पल दिखाते थे ताकि याद रहे, स्मृति, स्टोरी में स्मृति होती है। आप एक फिल्म को देखेंगे और उस फिल्म को पढ़ेंगे, दोनों में अंतर होगा। फिल्म देखी हुई आपको पूरी स्मृति में होगी, लेकिन आप जो सुनेंगे दूसरे से तो उतना स्मृति में नहीं रहेगा। तो बुद्धि दृष्ट जो होते हैं तो बुद्धि दृष्ट को कैप्चर करने की ताकत ज्यादा होती, इसलिए स्टोरिकल बाबा मुरली में यूज करता है स्टोरी, इसलिए स्टोरी यूज करता है। अब हम स्टोरी में ही फंस जाए, बाबा ने किन किन महान आत्माओं का नाम लेता रहता है बाहर दुनिया भी लोग। अभी कुछ दिन पहले ऋषिकेश के साधु का नाम था, क्या था, शिवानंद का नाम लिया था बाबा ने। तो बाबा एक्चुअल में बताना चाहता है, इशारा देता है ना उनके जीवन में क्या, और अपने कंट्रास्ट करके ताकि याद रहे आपको। तो यहां से अब कई लोग उसी कहानी को समझ के और उसी का उधेड़बुन करने शुरू कर देते, तो वास्तव में उसका अर्थ मोरल कुछ और होता है। जैसे बचपन में अपन सुनते थे कहानी, तो पहले कहानी सुनाते थे वो और फिर बताते थे इससे ये शिक्षा मिली। तो हमें शिक्षा को पकड़ना है, हमको कहानी किस्से को नहीं पकड़ के रखना है। एक बार एक राजा के दरबार में पेश किया गया मुजरिम, गुनाह कबूल कर लिया, ठीक है। तो राजा ने कहा कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है सजा भुगतने के, एक है 100 कौड़े खा लो, दूसरा ऑप्शन है 100 मिर्ची खा लो। तो बोला मिर्ची वाला जी है, कौड़े खाने से तो अभी खून निकलने लगेगा। तो मिर्ची थोड़ा पता था, बहुत जहरीली मिर्ची थी वो। एक मिर्ची खाया, 10 खाया, 20 तक खाया, जैसे तैसे 25 तक धुआं फेंकने लगा। फिर बोला नहीं राजा जी, कौड़े ही ठीक है। फिर कौड़े मारना शुरू हुआ उसको, दे कौड़े पे कौड़े, 30 कौड़े तक खा लिया, अरे बहुत दर्द है, मिर्ची ठीक है। फिर राजा से बोला मिर्ची खा लेंगे हम, फिर मिर्ची खाना शुरू किया, इस बार 40 खा गया। अरे यार मिर्ची भी कष्टदायक है। फिर बोला कि अरे मिर्ची नहीं खाना, हमको कौड़े खाना है। फिर कौड़ा मारना शुरू किया, जैसे तैसे 50 कौड़े खा लिया, अरे फिर दर्द है। फिर बोला मिर्ची खाना है, और इस बार 90 मिर्ची खा गया, फिर भी 10 की हिम्मत नहीं पड़ी। और फिर बोला कौड़े खाना है, और फिर भी 90 कौड़े खाया। और अंतिम ये निकला उसका निष्कर्ष कि 300 कौड़े भी खा गया और 300 मिर्ची भी खा गया, और सजा उसकी कम नहीं हुई, उसको कारागृह में डाल दिया, क्योंकि एक भी सजा पूरी नहीं किया उसने। तो कहने का भावार्थ ये है कि जो मोरल स्टोरी है तो इसके पीछे ये है कि हमने भी इस जीवन में आधा प्याव उस तरफ रखा, आधा इस तरफ रखा, एकांगी पकड़ंडी, फोकस ओनली, एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य बिंदु बस। उसके अलावा थोड़ा ज्ञान में भी चल रहे, थोड़ा लौकिक का संबंध भी निभा लें, थोड़ा इधर पार्टी सार्टी भी कर लें, थोड़ा बर्थडे भी मना लें, थोड़ा लौकिकता भी। बाबा ने कहा कि जिस दिन मेरा जन्म उस दिन तुम्हारा जन्म, जस्ट ऑल सॉल्व, अब कुछ नहीं। इसके आगे अगर याद हो तो दादी का जब बर्थडे मनाया गया तो दादी का फोटो, मतलब बाबा का फोटो ढांक दिया गया था, दादी एंटर नहीं कर रहे थे अंदर, बोले हमने नहीं जाना, भले ही कितना बड़ा प्रोग्राम, दादी मना कर दी अपने रूम से, बोले हम इधर तक पहुंच गए, अंदर एंट्री मना कर दिया दादी ने, हमको जाने नहीं। बाबा कहाँ है, हमको प्रत्यक्ष करने लायक है दादा, कैसा प्रेम। तो हमें अपने प्रेम को भी बार बार चेक करना, कहीं आके हम यहीं उसी धर्रे पे तो नहीं चल रहे जैसे लोग चल रहे, कौए की मत पे तो नहीं हम फॉलो करने लगे। चिड़िया बनना है तो अकेला अपना रास्ता खुद निर्माण करना पड़ेगा। शायद कुछ लोग भटक भी गए हैं, ये नहीं है जरूरी हर कोई सही मार्ग हो, इसलिए अपने मार्ग को, अपने भगवान के प्रेम है जो हमारा, उसको परखते रहना है। कहीं मेरी धारणाएं तो कमजोर नहीं हो गई, कहीं इधर मेरे को सुख सुविधाएं ज्यादा मिलने लगी, चाय मिलने लगी तो कहीं कहीं छह छह चाय पी रहा हूं मैं, और उस दुनिया में तो एक चाय पीना मेरे लिए बहुत कीमती था, और इधर आके कहीं मैं इतना तो नहीं डूब गया, आसक्ति तो नहीं हो गई इतनी। भोजन उतना ही लेना है जितना हमारे शरीर को चला सके, हम सेवा सुरक्षित रूप से कर सके, क्योंकि ब्रह्मचर्य की शक्ति नष्ट होती है बहुत सारी चीजों से। रेगुलर ब्रह्म मुहूर्त ना उठने से ब्रह्मचर्य नुकसान। करीबन हम 20 बुकों का निचोड़ आपको बता सकते हैं जो ब्रह्मचर्य के बारे में लोगों ने कहा है। जैन धर्म में 10 नियम है बहुत स्ट्रिक्ट, दूध दही घी पनीर जितनी भी चिकनी चीजें हैं, पराठा पापड़ अचार मुरब्बे, ये अगर कोई खा रहा है तो 100% ब्रह्मचर्य भी नहीं धारण कर सकता। प्योरिटी की बात तो बहुत दूर है। किसी को अगर डॉक्टर ने बोला किसी को बीमारी का इलाज के लिए है तो वो बात अलग है। दूसरा ब्रह्म मुहूर्त ना उठना। ब्रह्म मुहूर्त जो ना उठे उसका ब्रह्मचर्य निरंतर अखंड नहीं रह सकता। आप दुनिया की कोई भी बुक या खुद इसके अनुभव से आप सीख सकते हो। अधिक सोना, ब्राह्मण बनने के बाद अधिक नींद लेना, ज्यादा शरीर को सुख देना, वो भी बेकार। कल बाबा ने बोला था ना, इसका मतलब ये नहीं कि सोते रहना है, ये भी बोला था बाबा ने बाद में। तो वो रेस्ट है, उससे विकर्म विनाश नहीं होंगे, ये भी बाबा ने बताया था। तो ये निंदा, और ऐसा कनिष्ठ भोजन खा लेना जिसमें हजम करने पे ताकत लगती है। एक्चुअल में आपने देखा होगा खाना खाने के बाद हम थकावट महसूस करते हैं, खाना खाने के पहले नहीं। और खाना खाने में हमारी जो है ब्रह्मचर्य की जीवनी शक्ति जो ऊर्जा है वो नष्ट होती है खाना हजम करने में। इतना कनिष्ठ, इतना कठिन, इतना हार्ड नहीं खाने का जो हजम करने में ज्यादा हो तकलीफ, जितना हो तरल पदार्थ खाना है, ये ब्रह्मचर्य के नियम है। दूसरा और कि जब हमारा डाइजेशन होता है उसमें भी शक्ति नष्ट होती है, और उसको निकालने में भी जो वेस्टेज बनता है वो भी उसमें भी नष्ट होती है। ऐसे बहुत सारे नियम है, उसके बारे में जाएंगे तो बहुत है। और किसी एक ने कहा है कि जैसे दीपक में बाती है, ज्योति जब तक जलती रहेगी जब तक उसमें घृत है, तो घृत नहीं है तो जो ज्योति है वो बुझ जाएगी, ज्योति जल जाएगी पूरी। ऐसा ही है हमारे अंदर, अगर ऊर्जा बढ़ रही है दिन प्रतिदिन तो हर चीज आपके अंदर इंक्रीज। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बच्चे एक गुण धारण करने से तुम्हारे अंदर सारे गुण आ जाएंगे, वो कौन सा है। बाबा ने कहा था कि अगर जीवन में अखंड प्योरिटी धारण कर लो, उसके ऊपर पूरा कंट्रोल पूरा आप धारण कर लो, सारी चीजें ऑटोमेटिक आ जाएंगी। वास्तव में सहन शक्ति भी आ जाएगी, अतिंद्रिय सुख भी आ जाएगा, खुशी भी आ जाएगी। आप देखो जिस दिन आप मर्यादाओं के अनुसार दिन भर चले हो, आप भले ना बैठ के योग किया हो आपने, लेकिन मर्यादाएं बस फॉलो किए तो आपको खुशी नहीं रहती। शाम को आपको लगता है कि हाथ में कुछ आया, और आप कितना भी कुछ कर लो लेकिन कोई एक अवज्ञा हो गई, दृष्टिवृत्ति खराब हो गई, तो आपको पूरी 24 घंटे मतलब 23 घंटे 59 मिनट आपकी अच्छी अवस्था रही, एक मिनट के लिए आपकी दृष्टि खराब हो गई, आपको कांटे जैसे वही अटकेगा यार, ये तो पूरा मतलब हमारा 23 घंटे गड़बड़। इसलिए बाबा कहते हैं ना कि 5 मंजिल से गिरते हैं तो कैसे हड गोट टूट जाते हैं, उसके लिए तो लास्ट है फियर था। छठवां सातवां है ज्ञान। बाबा ने आज कहा मुरली में कि वही एग्जाम्पल कि पूछा तार, क्या बोला पूछा तार, पूछा तारे क्या क्यों कैसे अभी भी चल रहा है धूमकेतु है ना, वो तारा गिरता है तो उसको इधर भी बाबा ने कहा कि ज्ञान का कितना भी आप डालते रहो उनको नहीं जाएगा, क्योंकि वो संस्कार बदले नहीं है ना। तो अब बात दूसरे की नहीं रह गई, आजाद हमको ऐसी इन्हीं चीजों से होना है और वो आजादी तो हो ही जाएगी है ना, विश्व परिवर्तन होना ही है। बाबा ने कहा और देख भी रहे रिजल्ट, आज किसी को कहना नहीं है कि एक दूसरे के संपर्क में नहीं आओ, दूसरे ऑटोमेटिक अपनी सेफ्टी कर रहे हैं, मतलब बाबा करा लेगा परिवर्तन, लेकिन उससे पहले हमें अपने आप को परिवर्तन करना है, नहीं तो समय करेगा तो बलिहारी समय की। अच्छा ओम शांति।
मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हो मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हो आज रंग दे हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है, सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है, सूली के उस पार खड़ी है माँ ने हमें बोला।